अधमधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन है वल्लभ जय गिरिवर धरी जय हो जय हो जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज नितय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नेतलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम नंदी ऑल ग्लोरी टू सेंट डिवोटी, ऑल ग्लोरी टू सेंट डिवोटी, ऑल ग्लोरी टू सेंट डिवोटी, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप सबको राधाष्टमी का उत्सव कृष्ण भावना भावित हो। हम लोग बधाई नहीं देते, हम लोग क्या कहते हैं, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस राधाष्टमी। राधा रानी के बारे में बताया गया है कि एक परार्ध की संख्या बहुत बड़ी होती है। पता एक परार्ध की संख्या कितनी होती है? 10 के ऊपर 19 पावर लगा दें, 10 के ऊपर 19 की पावर लगा दीजिए, या एक के बाद 19 शून्य लगा दीजिए, ये संख्या कितनी है परार्ध की। और इसको इतनी संख्या से फिर गुणा करो, इसका मतलब एक के बाद 38 शून्य आप लगाइए, तो ये एक परार्ध गुणा एक परार्ध है, इतनी संख्या आप समझ लीजिए। फिर राधा रानी के बारे में बताया गया है कि राधा रानी कृष्ण को अपने प्राणों से इतना अधिक गुना चाहती हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? एक के बाद 38 शून्य लगा दिए, कितनी बड़ी संख्या हो गई, बहुत बड़ी संख्या हो गई। इतना गुना राधा रानी कृष्ण को अपने प्राणों से इतने अधिक गुना चाहती हैं। नहीं आया समझ? नहीं आया? आ गया? हरि बोल। राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति अपने प्राणों से इतने अधिक गुना, एक के बाद 38 शून्य गुना, राधा रानी का प्रेम अपने प्राणों से इतने अधिक गुना है कृष्ण के प्रति। कृष्ण को जो है वो इतना अधिक चाहते हैं अपने प्राणों से ज्यादा बढ़ करके। तो हम कुछ सुनेंगे घटनाएं, तो बहुत सी घटनाएं राधा रानी के विषय में। एक घटना हम सुनेंगे कि जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ा और जितने देवता हैं गोलोक धाम गए, गोलोक धाम में भगवान कृष्ण से बातचीत हुई और कृष्ण जो है उन देवताओं से बोलते हैं। देवताओं की स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, इत्युक्तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण गोकुलेश्वर प्रत्याह प्रणतान देवान मेघ गंभीर या गिरा। अब भगवान गोलोक धाम में अभी अवतार नहीं लिया है, और सब देवता लोग जो है भगवान के धाम में है और भगवान उनसे बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो, मेरे आदेश के अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। हे सूर्य ज्येष्ठ, हे शंभो देवा शृणुते मद वचहं, यावदेषु च जन्यध्वं अंशस्त्रीभिर्मदाज्ञया। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा, मेरा ये अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य पूरे करूंगा। अहम चावे तरिष्यामि हरिष्यामि भुवो भरम करिष्यामि चवा कार्यम भविष्यामि यदुकुले। मेरी वेद मेरी वाणी है और ब्राह्मण मेरा मुख है और गौ मेरा शरीर है, सभी देवता मेरे अंग हैं, साधु पुरुष तो हृदय में निवास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। वेदा में वचनम विप्रा मुखम गावस्तनुर मम अंगानि देवता योजम साधवो यशवो हृदय। अतः प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ और दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। योगे योगे चबाधेत यदा पाखंड फिर जन धर्म क्रतुर दया साक्षात तदात्मान सृजाम्य हम। तो नारद जी कहते हैं जिस समय श्री कृष्ण इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी क्षण राधिका जी व्याकुल हो गई। अब सब लोग तो प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान आएंगे, लेकिन एक व्यक्ति व्याकुल हो रहा है और वो कौन है? राधिका। राधिका जी व्याकुल हो गई क्यों? अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा ये समझकर राधिका व्याकुल हो गई और जली हुई लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में कंपन, अश्रु, रोमांच इन भावों का उदय हुआ। इत्युक्तवन्तं जगदीश्वरं हरिं राधापति प्राण वियोग विवला दावाग्निना दुःख लते विमूर्छिता श्रुकंप रोमांचित भाव संवृता। राधिका जी ने कहा, अब सुनिए बड़े ध्यान से राधा जी श्री कृष्ण से क्या बोल रही हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है उसे भी सुन लें। आप तो जाएंगे, आपको तो जाना ही है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए क्या है। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो मैं दोबारा कह रही हूँ, अब मेरे प्राण ओठों तक पहुँचने को अत्यंत बेहवल हैं। ये शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के कण उड़ जाते हैं। भुवो भरम हर तुमलम ब्रजेर भुवम कृतम परम मे सपतम शुणत्वतः गते त्वयि प्राण पते च विग्रहम कदाचित् त्रैव न धारयाम्यहम यदा त्वमेवं सपतम न मन्यसे द्वितीयवारं प्रददामि वाक्पथम प्राणे धरे गन्तुमतीव विह्वलः कर्पूर धूमा कणवन् गमिष्यति। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो चिंता क्या है? भगवान कहते तुम्हें चिंता क्या है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा, मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। तो या सह गमिष्यामि मा शोकं कुरु राधिके हरिष्यामि भुवो भारम करिष्यामि वचस्तव। लेकिन राधा जी की और समस्या है, इतना भी जो है पर्याप्त नहीं है राधा रानी के लिए। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, इतना पर्याप्त नहीं है। राधा रानी की और भी कुछ मांग है। क्या है? हे प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। आपके साथ होते हुए भी मुझे सुख नहीं मिलता, मेरी ये भी आवश्यकता है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे नामना सुखम। श्री कृष्ण ने जब राधा रानी ने ये बात कही तो कृष्ण फिर राधा रानी की इस बात को भी पूरी की। तो श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस की भूमि भी अपने साथ भेजी, पहले से भेज दी। 84 कोस की भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजा, तीनों चीजों को, 84 कोस की भूमि है और गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान को प्रणाम किया। वेदना गय क्रोश भूमिम सुधाम ना श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषया मास भूपरी। तो ये तो कुछ चर्चा हमने की, अब जन्म की जो लीला है उसे हम सुनेंगे। आज बहुत विशेष योग मिला है, इस साल राधा रानी के जन्म का विशेष योग मिला है। वो क्या है कि राधा, इस ग्रंथ के अनुसार राधा रानी का जन्म हुआ था वो तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तो है ही है, वो तो हर साल होती है, लेकिन सोमवार का दिन, तो इसमें भी लिखा है सोमवार का दिन था। राजा बहुलाश सुन रहे हैं इस कथा को और नारद जी सुना रहे हैं। राजा बहुलाशु का हृदय भक्ति भाव से पूर्ण था, हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर महाविलक्षण देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। राजा बहुलाशु ने कहा, हे महर्षि, आपने अपने आनंद प्रद निर्मल यश से मेरे कुल को उज्ज्वल बना दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष और महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। तो या कुलम को अविशदीकृतम में स्वानंद दौर्यमल श्री कृष्ण भक्त क्षण संगमे न जनोपि संस्यान बहुना के मुश्वेन। हे देवर्षि, श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपा पूर्वक बताइए। हे देवर्षि, हे ऋषिश्वर, इस कथामृत द्वारा आप तीनों तापों के दुख से मेरी रक्षा कीजिए। कौन कह रहे हैं? राजा बहुलाशु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए इस कथा के द्वारा। किससे? तीन प्रकार के तापों के दुख से। श्री राधया पूर्ण तमस्तु साक्षात् गत्वा ब्रजे किं चरितं चकार तन्द्रोहि मे देव ऋषे ऋषीश त्रिताप दुःखात् परिपाहि मां त्वम्। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, वो कुल धन है जिसे राजा निमि ने अपने गुणों से परिपूर्ण बनाया है। तुम निमि के वंश में पैदा हुए हो, तो निमि महाराज निमि के कारण तुम्हारा ये वंश धन्य हो गया है। नारद जी कह रहे हैं, और जिसमें तुम जैसे भाव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। इस कुल की पवित्रता का दूसरा कारण यह भी है कि तुमने जन्म लिया इस कुल में। तुम्हारे कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। धन्यम कुलम यन निमिषान पेण श्री कृष्ण भक्ते न परात्परेण पूर्णीकृतम यत्र भवान प्रजातो सुप्तो हि मुक्ता भवनम न चित्रम। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के ही नहीं अपितु भूतल के संतों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। अतः प्रभोस्तस्य पवित्र लीलाम सुमंगलाम संतृणताम परस्य अभूषताम यो भुवि रक्षणार्थम न केवलम कंस वधाय कृष्णः। उन्होंने अपनी पराशक्ति श्री राधा का ब्रजभानु की पत्नी कीर्तिदा के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा यमुना के तट पर निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। अथैव राधाम ब्रजभानु पत्न्याम आवेश रूपम महसा पराख्यम कलिंद जाकुल निकुंज देशे सुमंदिरे सावित तारे राजन। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्यान्ह का समय था। मध्यान्ह का समय 12 बजे मध्यान्ह का समय होता है 12:34 से 3:22 है ना। तो उसके बीच में वो 12 क्षमा करना, मैंने क्या बताया? नहीं नहीं 10:34 मध्यान्ह काल 10:34 से 3:22 तक चलता है। 4 घंटा 48 मिनट का होता है। तो बीच का जो समय है वो 12 बजे होता है, है ना। तो राधा रानी 12 बजे जन्म लेती हैं। आकाश में बादल छाए हुए थे और देवता नंदनवन के फूलों की उस भवन पर वर्षा कर रहे थे जिस भवन पर राधा रानी का जन्म हुआ। ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही थी, पृथ्वी के फूल नहीं थे। पृथ्वी में कोई फूल लाने वाला नहीं था। अभी तो पृथ्वी के फूल बहुत आए हैं यहाँ पर, लेकिन उस समय पृथ्वी के फूल कोई नहीं बरसा रहा था। नंदनवन के फूलों की वर्षा ऊपर से हो रही थी। घनावृते व्योमनि दिनस्य मध्ये भाद्रे सिते नागतथो च सोमे अवाकिरण देव गणा स्फुरद्भिर् तन्मन्दिरे नंदन जय प्रसूने। उस समय श्री राधिका के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, कमलों की सुगंधि से शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित होने लगी। राधावतारेण तदा बभूवरुण नद्यो मलाभाश्चा दिशा प्रसेदु बभुश्च माता अरविंद रागे सुशीतला सुंदर मंदयाना। शरद पूर्णिमा के सौ सौ चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर कन्या को देखकर कीर्तिदा गोपी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण के लिए आनंददायिनी 2,00,000 कौए उत्तम ब्राह्मणों को दान में दी। हरि बोल। 2,00,000 गौ में दान में दी। सुताम शरद चंद्र सताभिरामां दृष्ट्वाथ कीर्तिर मुदमाप गोपी शुभम विधाया सुददो द्विजेभ्यो दुलक्षमानंद करम गवाम च। जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राधा रानी का तो कोई नहीं जानता है। कृष्ण का तो दर्शन किया था जब कृष्ण ने जन्म लिया था, और जन्म से पहले भी देवता लोग आते थे, कृष्ण की गर्भ स्तुति करने के लिए आते थे, लेकिन राधा रानी का तत्व देवताओं को भी पता नहीं है। बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है जिनका दर्शन तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते। वे ही श्री राधिका जी जब ब्रजभानु के यहाँ प्रकट हुई तो गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। आश्चर्य प्रेंखे यद दर्शनम देव वर सुदुर्लभम यज्ञ रमाप्तम जन जन्म कोटि भी सभी ग्रहाम ताम ब्रजभानु मंदिरे ललंति लोका ललना प्रलालने। सुवर्ण जटित और सुंदर रत्नों से खचित क्या है? पालना। पालना जिसमें राधा रानी लेटी हैं वो सुवर्ण जटित और सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित है। चंदन की लकड़ी का बना हुआ है पालना। चंदन की लकड़ी का बना है, सोने से जटित है और सुंदर रत्नों से खचित है और रत्न से मंडित है। पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है बहुत जल्दी बढ़ता है ना, और 15 दिन में क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। आंदोलिता प्रेंखे खचिंद रत्न मयूखे पूर्णे सुवर्ण युक्ते कृत चंदनांगे आंदोलिता सावृते सखी जनेर दिने दिने चंद्र कले विभाभी। श्री राधा का वर्णन है रास रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, ब्रजभानु मंदिर की दीपावली और गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हारावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। नारद जी कह रहे हैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ और सुरक्षित रहता हूँ, माया से सुरक्षित रहता हूँ। नारद जी कहते हैं श्री रास रंगस्य विकास चंद्रिका दीपावली फिर ब्रजभानु मंदिरे गोलोक चूड़ा मणिकंठ भूषणाम ध्यात्वा पराम ताम भुवि परिगताम्यहम्। अब बहुलाश ने पूछा, सुनिए बड़े ध्यान से, राजा बहुलाश पूछ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा बहुलाश ने पूछा, हे मुने ब्रजभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रजभानु का सौभाग्य वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था? कलावती कीर्तिदा पिछले जन्म में कीर्तिदा है, नहीं कीर्तिदा पिछले जन्म में कलावती और ब्रजभानु पिछले जन्म में सुचंद्र। तो कलावती सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये भी जानना आवश्यक है। ब्रजभानु रहो भाग्यम यस्य राधा सुता भवन कलावत्या सुचंद्रेण किम कृतम पूर्व जन्मनि। तो नारद जी कहते हैं राजन, राजा महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। राजा नृग, इनका नाम तो सुना है, राजा नृग है ना, तो राजा नृग जो है इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, सूर्य वंश में इक्ष्वाकु नृग सर्याति दिष्ट धिष्ट करुषकान, 10 पुत्र हुए जो राजा इक्ष्वाकु के, उनमें से इक्ष्वाकु के छोटे भाई नृग हैं। हाँ, जो गिरगिट, जिनको गिरगिट बनना पड़ा है ना, तो राजा नृग के पुत्र थे सुचंद्र। तो इस वैवस्वत मन्वंतर में जो है बहुत प्रारंभ के ये राजा हैं, मतलब पहली चतुर्युगी, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है, पहली चतुर्युगी में ये जो है सुचंद्र राजा थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती राजा थे। नृगपुत्रो महाभागा सुचंद्रो नृपतीश्वर चक्रवर्ती हरेरंसो बभूवातीव सुंदर। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी जो परम सुंदरी थी। पितरों की 3 मानसी कन्याएं, मानसी मतलब मन से उत्पन्न हुई 3 कन्याएं पितरों की, उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पहली कन्या है कलावती, दूसरी है रत्नमाला और तीसरी मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दिया, रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में दिया और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। तीनों ही ये जो कन्याएं हैं ये जो है माता बनी, भगवान की शक्ति की माता बनी है। रत्नमाला से सीता जी का जन्म हुआ, रत्नमाला से सीता जी का जन्म हुआ और मेनका के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। और कलावती को साथ लेकर सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ श्रुत गोस्वामी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों का जो है वाचन करते हैं, सुनाते हैं। उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या प्रारंभ की। वो तपस्या देवताओं के काल से 12 वर्षों तक चला। देवताओं के गणना से 12 साल, देवताओं की गणना से 12 साल, तो मनुष्यों की गणना में 360 से गुणा करना पड़ेगा। 360 से गुणा करेंगे 12 में तो कितना होगा, 4200 है, 4200 साल। नैमिषारण्य में 4200 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। सुचंद्रो थे कलावत्या गोमती तीरजे बने दिव्यैर द्वादश फिर वर्षैस तताप ब्रह्मणस्तपः। तब ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले वर मांगो। ब्रह्मा जी आए और बोले वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थीं। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बामी से बाहर निकले। राजा के शरीर में दीमकें चढ़ गई थीं और मांस उनका जो है सब समाप्त हो चुका था, है ना, कंकाल रह गया था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर जल छिड़का तो उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और बाहर निकल आए, बाहर निकल आए। अपना पहले का शरीर तो उनका नष्ट हो ही चुका था, दिव्य शरीर धारण करके उस बामी से बाहर निकल आए। अथ विधिस्तमागत्य वरम ब्रूहित्युवाच श्रुत्वा वाल्मीकि देशाचा निर्ययो दिव्य रूपधरे। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। कैसा मोक्ष चाहिए? निराकार, निराकार ब्रह्म सायुज्य, हमको वो मोक्ष चाहिए। किसने कहा? राजा सुचंद्र ने कहा। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया, अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, नहीं गलत बात है, इनको नहीं देना, वो मोक्ष नहीं देना। तम नत्ववाच मे भूयात् दिव्यं मोक्षं परात्परं तच्छ्रुत्वा दुःखिता साध्वी विधिं प्राहे कलावती। तो वो साध्वी है, कलावती जो है साध्वी है, यहाँ साध्वी कहा गया है, वो दुखी हो गई। तो साधु दुखी होता है इस मोक्ष से। कैसे मोक्ष से? निराकार ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, तो साधु नहीं चाहते ऐसा मोक्ष। तो कलावती जो है दुखी हो गई और ब्रह्मा जी से बोली, हे पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है, यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। पति रेव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्षम सोयाति तदा मे काकतिर भवेन, इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं आपको शाप दूंगी। ये ऐसे साधु होते हैं, साध्वी स्त्री होती है और पुरुष साधु होता है। ब्रह्मा जी को भी श्राप देने के लिए तैयार है, अगर आपने इनको ऐसा मोक्ष दिया तो मैं आपको श्राप दूंगी। एनम बिना न जीवामि यदि मोक्षम प्रदास्यसि तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पतिविक्षेपे विह्वलम्। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। किंतु मेरा दिया हुआ वर विफल नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। तो छापान भय भी तो हम मेवरोपी मृषा नहीं तस्मात् त्वं प्राणपतिना सार्धं गच्छ त्रिविष्टपम्। वहां स्वर्ग सुख भोगकर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी, द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। इस पूरे स्थान तो गंगा यमुना के बीच का ही है, जब तक गंगा जी का यमुना जी से संगम नहीं होता है तो उस बीच में जो है गंगा यमुना के बीच में तुम्हारा जन्म होगा। भुक्त्वा सुखानिकालेन युवां भूमौ भविष्यतः गंगा यमुनयोर मध्ये द्वापरान्ते च भारते। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका पुत्री रूप में प्रकट होंगी तब तुम दोनों साथ ही मुक्त होगे, साथ साथ रहोगे। युवियो राधिका साक्षात परिपूर्णतमे प्रिया भविष्यति यदा पुत्री तदा मोक्षम गमिष्यतः। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य और अमोघ वरदान से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। तो बहुत समय जो है बीत गया इसके बीच में, बहुत समय बीत गया है ना, क्योंकि पहले चतुर्युग में इनका हुआ था, मतलब इन्होंने तपस्या की थी और 28वीं चतुर्युगी में 28वीं द्वापर के अंत में इन्होंने जन्म लिया। इत्थं ब्रह्मवरेणाथ है दिव्य नामोगे रूपिणाम कलावती सुचंद्रोचा भूमो तो द्वभूवतु। यही कीर्तिदा और श्री वृषभानु हुए। तो कीर्तिदा का जन्म हुआ कान्यकुब्ज देश में, जिसे आजकल कहते हैं कन्नौज, कन्नौज कानपुर के पास कान्यकुब्ज की राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई राधा रानी की माता। अयोनिजा है, स्त्री के गर्भ से नहीं जन्म लिया। हाँ, राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई कलावती कान्यकुब्जे भलंदन पश्चा जाति स्मरा है भू दिव्या यज्ञ कुंड समुद्भवा। जाति स्मरा, ये कन्या जाति स्मरा थी, यानी जन्म लेते ही इसको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी, जाति स्मरा उसको बोलते हैं। जाति स्मर पुरुष को बोलते हैं जाति स्मर और स्त्री को बोलते हैं जाति स्मरा, जिसे पिछले जन्म की सब बातें याद हों, जन्म के समय सब कुछ पता हो। तो जो कलावती हैं ये कीर्तिदा के रूप में जाति स्मरा यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई कान्यकुब्ज के राजा भलंदन के यहाँ। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं और सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ, उस समय भी वृषभानु नाम से विख्यात हुए, उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहे। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। सुचंद्रो वृषभान वाख्या सुरभानु गृहे भवन जाति स्मरो गोप्यवरहा कामदेव एवा परहा। परम बुद्धिमान नंद राज ने ही इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। तो ये एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन गोप वंश में इनका जन्म हुआ वृषभानु का, और राजवंश में जन्म हुआ कीर्तिदा का, तो संबंध हो नहीं सकता था, विवाह संबंध नहीं हो सकता था। तो इसकी एक अलग ही घटना है कि नंद जी ने किस प्रकार से राजा भलंदन को समझाया कि आपको जो है विवाह करना चाहिए। तो महाराज नंद के द्वारा ही, परम बुद्धिमान नंदराज ने ही इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी नंदराज की कि भलंदन को समझाया और भलंदन जो है तैयार हो गए। कोई राजा एक गोप को अपनी कन्या नहीं देना चाहेगा, राजा की पुत्री गोप से कैसे विवाह हो विवाहित हो सकती है। नंदराज ने जो है उनको समझाया था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी और एक दूसरे को चाहते थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। संबंधम जो जयामास है नंदराजो महामति तयोर से जाति स्मरियोर इच्छतो इच्छया द्वयो। जो मनुष्य वृषभानु और कीर्तिदा के उपाख्यान को श्रवण करता है, अब श्रवण का भी एक महात्म्य है, सुन रहे आप लोग, जो मनुष्य वृषभानु और कीर्तिदा के इस उपाख्यान को श्रवण करता है वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हरि बोल। और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल हरि बोल। वृषभानु कलावत्या आख्यानम सुनते नरहां सर्व पापे विनिर्मुक्ता कृष्णम सायुज्य माप्नुया। अब एक घटना जो मैं सुनाऊंगा तो उसको कई बार हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन जितने बार सुनते हैं उतना ही इसका जो है रस है। बहुत ही दिव्य घटना है, इसमें बहुत शिक्षा भी है और राधा रानी का बहुत महात्म्य है, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये वृंदावन खंड है, गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 17वां और 18वां अध्याय है। राजा बहुलाश बोले, हे मुनि, श्री राधा के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का रस पीते हुए भ्रमर को तृप्ति नहीं होती है। राधा कृष्ण से चरितम श्रृणवतो मे मनो मुने न तृप्तिम याति शरदा पंकजे भ्रमरो यथा। हे महर्षि, हे तपोधन, श्री कृष्ण पत्नी राशेश्वरी द्वारा, राधा द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो घटना घटित हुई वो मुझे सुनाइए। राधा रानी ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 6 महीने तक तुलसी सेवा का व्रत किया था, और तुलसी देवी स्वयं प्रकट हुई थी राधा रानी को वरदान देने के लिए, और राधा रानी को वरदान दिया था तुलसी जी ने। तो राजा भवनास पूछ रहे हैं कि जब तुलसी जी का वरदान मिल गया, अब राधा रानी को जो है कैसे कृष्ण प्राप्त हुए, क्या घटना हुई, तुलसी से वरदान प्राप्त हो गया राधा रानी को, तो अब क्या घटना हुई, पूछ रहे हैं। राशेश्वर्या कृष्ण पत्निया तुलसी सेवने कृते यद बभूव ततो ब्रह्मन् तन्मे ब्रूहि तपोधन। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। प्रेम की परीक्षा कौन लेते हैं, भगवान लेते हैं। तो राधा रानी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान कहाँ पर गए, वृषभानुपुर में गए, जिसे बरसाना बोलते हैं। बरसाना जो है इसका शुद्ध जो शब्द है वो वृषभानुपुर है। वृषभानुपुर, वृषभानुपुर का मतलब है वहाँ पर जितने लोग हैं सब वृषभानु ही हैं, सब वृषभानु हैं। राधा रानी के पिता वृषभानु नहीं है, राधा रानी के पिता वृषभानुवर हैं। वृषभानु उसे कहते हैं जिसके पास 10 लाख गौ हैं, उसे वृषभानु कहते हैं। ऐसे 6 वृषभानु हैं ब्रज में, तो वृषभानुपुर में सब वृषभानु हैं और एक वृषभानुवर हैं, वृषभानुओं के राजा राधा रानी के पिता जिनके पास 50 लाख गौ हैं उसे वृषभानुवर बोलते हैं। तो वृषभानुपुर में भगवान श्री कृष्ण गए। राधिकायाश्च विज्ञाय तुलसी सेवने तपः प्रीतिम परीक्षन श्री कृष्णो विषभानुपुरम ययौ। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। तो भगवान जो है जब परीक्षा लेंगे तो ऐसी जो है स्थिति में मतलब डालते हैं, जो परीक्षक होता है तो वो तो प्रश्न ही बनाता है ना, और जो परीक्षार्थी है वो उस प्रश्न को हल करता है ना। तो भगवान ने जो है गोपांगना का रूप धारण किया। चलते समय उनके पैरों में मधुर झनकार हो रही थी, करधनी में लगी क्षुद्र घंटिकाओं की मधुर खन खनाहट सुनाई पड़ती थी, अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकारनुपुरम किंकिणी घंटिका शब्दम अंगुलीय कै भूषितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद, कंठ और वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे, और शीश फूल से सुशोभित केश पासों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। रत्न कंकण के यूर मुक्ताहार विराजितम बालार्घताटंक लसन कबरी पास कौशलम। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी, शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के भवन को देखा। नासा मोक्त दिव्याभम श्याम कुंतल संकुलम धृत्वा सौ वृषभानोश्च मंदिरम संददर्श। और वृषभानु का जो भवन है चार दरवाजे हैं, उस भवन के चार दरवाजे हैं, खाई परकोटों से युक्त है, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान बड़े बड़े हाथी झूमते हैं प्रत्येक द्वार पर, जिससे राजभवन की मनोहरता बढ़ गई है। प्राकार परिखा युक्तम चतुर्द्वार समन्वितम करीन्द्र कज्जलाकार द्वारी द्वारी मनोहरम। उस मंडप का प्रांगण हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र रंग वाले घोड़ों से शोभा पा रहा था। वायु वेगैर मनोवेगैर चित्रवर्ण सुरंग में हार चामर संयुक्तम प्रोलसन मंडपाजिरम। हे राजन, बछड़ों सहित गऊं और धर्म धुरंधर बैलों से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां बंसी और बैत धारण किए गीत गा रहे थे। गवाम गणेशवत्सैश्चा वृषहैर धर्म धुरंधर गोपाला यत्र गायन्ते बंसी वेत्र धरा नृप। वृषभानुवर के भवन का निर्माण कौशल देखती हुई मायामय युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उसके प्रांगण में प्रविष्ट हुए। वृषभानुवरस्यैवं पश्यन् मंदिर कौशलम माया युवती वेशोऽसौ ततो ह्यन्तः पुरं ययौ। जहाँ करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश वाले दरवाजे और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रहे थी, वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा स्त्रियां शोभित हो रही थी। यत्र कोटि रवि स्फूर्जन कपाल स्तंभ पंक्तिहा रत्नाजरेश शोभन्ते ललना रत्न संयुता। बीणा ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थीं। बीणा ताल मृदंगादीन वादयंत्यो मनोहरा पुष्पयष्टि समायुक्ता गायंत्यो राधिका गुणम। उस अंतःपुर में दिव्य और विशाल उपवन की छटा छा रही थी, उसके भीतर अनार कंद मंदार नींबू और अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। तस्मिन् अन्तःपुरे दिव्यम भ्राजच्चोपवनम महन दानमी कुंद मंदार है नीबोन्नत द्रुमावृतम। केतकी मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थीं। वहीं राधा का निकुंज था जिसमें कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध भरी थी। क्या अद्भुत वर्णन है। केतकी मालती वृंदैर माधवी विराजितम तत्र राधा निकुंजोस्ति कल्प वृक्ष सुगंधि भ्रेन। हे राजन, उस उपवन में मधु पीकर मत वाले भौरे टूटे पड़ते थे, वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। पतंति यत्र भ्रमरा मधुमत्ता नृपेश्वर है गंधाक्ता शीतलो वायुर मंदगामी बहत्यलम। जो हजार दल के कमलों की पराग को बिखेर रही थी, हजार दल के कमल उस भवन में है और उनका पराग हवा बिखेर रही है। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और सुख पक्षी मीठी आवाज में बोल रहे थे। वहां फूलों की हजारों सैयाएं सज्जित थीं और पानी की हजारों नहरें बह रही थीं। सहस्त्रपद सहस्त्र दल पद्मानाम रजो विक्षेपयन मोहो पुष्को किला को किलाश्चा मयूरा सारसा सुका कूजन्ते मधुरम नादम निकुंज शिखरे सुचा पुष्प सैया सहस्राणी जलकुल्या सहस्रशः। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। कुंडल कांतिमान कुंडल और विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थीं। उनके बीच में श्री राधिका उस राज भवन में टहल रही थीं। जब भगवान पहुंचे परीक्षा लेने के लिए, उस समय राधा रानी क्या कर रही हैं? टहल रही हैं। प्रोचलंद स्फुरत स्फारा यत्र वह मेघ मंदिरे बालार के कुंडल धरास चित्र वस्त्रांबराम ननाम वर्तन्ते कोटिशो यत्र सख्यस्तत्कर्म कौशला तन्मध्ये राधिका रागी भ्रमंती मंदिरा जिरे। वो राज मंदिर केसरिया रंग के वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पहाड़ के फूल भी और पानी के भी फूल और जमीन के भी फूल, बहुत से फूल हैं। कोमल पल्लव इतने अधिक संख्या में बिछाए गए कि पांव रखने पर घुटना तक ढक जाए, इतने पल्लव हैं। काश्मीर पंक संयुक्ते सूक्ष्म वस्त्र विराजिते सिरे से पुष्प क्षितिज दलेरा गुल्फ पूरके। मालती के मकरंद की बूंदें झड़ती रहती थीं। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमती कोमलांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरण कमलों का संचालन करती हुई घूम रही थीं। मालती मकरंदा नाम चरंदिर बिंदुर भिर्वृते कोड़ी चंद्र प्रतीकाशा तन्वी कोमल विग्रह सने सने पाद पद्मम चालयंती च कोमलम। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को प्रसभानुनंदिनी श्री राधा ने देखा। अब देखा क्या देखा? एक कोई गोप सुंदरी है। उनके मणि मंदिर के आंगन में आई हुई है कोई गोप सुंदरी आई हुई है। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। हतप्रभ का मतलब प्रभाव फीकी पड़ गई, सब फीकी पड़ गई। वहाँ उस है इस गोप सुंदरी को देख करके वहाँ की जितनी ललनाएं सब फीकी पड़ गईं, जैसे चंद्रमा के सामने ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। समागताम ताम मणिमंदिनाजरे ददर्श राधा वृषभानुनंदिनी या तेजसा ललना हृदय त्रिशो जातास्तुरम चंद्रमा सेव तारिका। उसके उत्तम और महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अगवानी की, परिचय नहीं हुआ लेकिन ऐसा तेज था उस गोप कन्या का, ऐसा तेज था कि राधा रानी ने तुरंत अगवानी की। दोनों बाहों से गाढ़ आलिंगन करके दिव्य सिंहासन पर बिठाया और लोक रीति के अनुसार जल आदि अर्पित करके सुंदर पूजन आरंभ किया। अभी कोई परिचय नहीं, कोई बातचीत नहीं है और पूजा शुरू कर दी। राधा रानी ने पूजन शुरू कर दिया। विज्ञायतन गौरव उत्तम महन उत्थाय दौरभ्याम परिरभ राधिकाम दिव्यासन स्थाप्य श्लोक रीत्या जलाधिकम चारहरण भार मच्छुवम। राधा बोली, हे सुंदरी सखी तुम्हारा स्वागत है, मुझे शीघ्र अपना नाम बताओ। क्या बताओ? अपना नाम बताओ। सबसे पहले कौन बोली? राधा रानी बोली, तुम्हारा स्वागत है, तुम शीघ्र अपना मुझे शीघ्र अपना नाम बताओ, तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, ये मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। बिना बुलाए आ गई, ये मेरा महान सौभाग्य है कि मैं जानती भी नहीं तुमको और तुम आ गई हो, मेरे पास आ गई हो। स्वागतम ते सखी शुभे नाम धेयम बदा सुमे भूरि भाग्यम ममे वाद्य भवत्या गतया स्वतः। भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता है। हे देवी, जहां तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वो नगर निश्चय ही धन्य है। अब कहां तुम निवास करती हो तुम्हें नहीं जानती, लेकिन जो भी नगर हो वो बहुत धन्य है जहां तुम निवास करती हो। तत्समानम दिव्य रूपम दृश्यते नहि भूतले यत्र तुम वर्तसे सुभ्रो पत्तनम धन्यमेव तन्। हे देवी, तुम अपने आगमन का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताओ, थोड़े में नहीं बताओ, विस्तार पूर्वक बताओ अपने आगमन का वृत्तांत। मेरे योग्य जो कार्य हो वो तुम्हें अवश्य बताना है, जरूर बताना मेरे योग्य जो कार्य हो। वद देवी सविस्तारम हेतुमागमनस्य च मम योग्यम च यत् कार्यम वक्तव्यम तत्त्वया खलु। तुम अपनी बागी चितवन सुंदर दीप्ति मधुर वाणी मनोहर मुस्कान चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्री कृष्ण के समान दिखाई देती हो। रंग भी तुम्हारा कृष्ण के समान है, चेहरा भी ऐसे ही कृष्ण के समान चेहरा है। बद देवी सविस्तारम कटाक्षेण सुदीप्त्या च वचसा सुस्मितेन वै गत्या कृत्या श्रीपतिवन दृश्यते सांप्रतम मया। हे सुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो कि मैं आऊं तुम्हारे पास। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वो विधि तुम्हें सदा उपयोग में लाना है। नित्यम सुभे में मिलनार्थ मां ब्रज नचेत स्वयं सुसंकेत मलम विधेहि ये न व्यसंगो विधि न भवेधि विधिर भवत्या सदा विधेयः। हे सखी, तुम्हारा ये शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि मेरे प्रियतम की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो, जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। आई तुमा तदात्माति परम प्रियो मे तदाकृते श्री ब्रजराज नंदन ये नव मे देवी हृतम दु चेतन तया ननान देव वधूर ददामी दधामी तम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ये सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री कृष्ण ने राधा से इस प्रकार कहा। एवं राधा वचः श्रुत्वा माया युवती वेशधरीं वाच भगवान कृष्णो राधाम कमल लोचनाम। श्री भगवान बोले, हे रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। नंद नगर से नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। क्या नाम है? गोप देवी है। रंभोरु नंद नगरे नंद गे हस्य चोत्तरे गोकुले वसतिर्मेस्ती नामना हम गोप देवता। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। कैसे आ गई, मुझे कैसे पता चला तुम्हारा? तो ललिता के मुख से तुम्हारे रूप और गुणों का माधुरी सुना मैंने। अतः हे सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। तद्रूप गुण माधुर्यम श्रुतम मे ललिता मुखान तद्दृष्टुम चंचला पांगी त्वंगृहे हम समागता। हे देवी, जहाँ लवंग लता की स्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजन निकुंज में भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त कमल के फूल खिल रहे हैं, ऐसा दिव्य नगर जो मैंने सुना था आज अपनी आंखों देख लिया है। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। श्रीमन लवंग लतिका स्फुट मोदिनी नाम गुंजान कुंज मतुप धुने कुंज पुंजम दृष्टम श्रुतम नव नवम तब कंज नेत्रे दिव्यम पुरंदर पुरे पी न यत समानम। नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ, वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए उपवन में शोभा पाने लगे। तयोर एवं तयोर मेलनम तं बभूव मिथिलेश्वर प्रीतिम परस्परम कृत्वा वने तत्र विरेजतु। फूल की गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे, वन के वृक्षों को देखते हुए इधर उधर विचरने लगे। हसंत्यो तेच गायंत्यो पुष्प कंदुकलीलया पश्यंत्यो वन वृक्षांचा चेरतुर मेथलेश्वर। हे राजन कला कौशल से संपन्न राधा को संबोधित करते हुए गोप देवी ने मधुर वाणी में कहा, कला कौशल संपन्नाम राधाम कमल लोचनाम गिरा मधुरया राजन प्राहेदम गोप देवता। गोप देवी बोली, हे ब्रजेश्वरी नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अब आज्ञा दो मुझे, आज्ञा दीजिए मुझे। क्यों? नंद नगर यहाँ से दूर है और संध्या हो चली है, अतः जाती हूँ कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। दूरे वैनंद नगरम संध्या जाता ब्रजेश्वरी प्रभाते चागमिष्यामि तत्सकाशम न संशयः। नारद जी कहते हैं राजन गोप देवी की ये बात सुनकर श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली, रोमांच और हर्ष के भाव से आवृत हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्रुत्वा वचस्तस्य तुतन ब्रजेश्वरीं निक्षिप्य सन्ध्यो नैनाम् संततिम् रोमांच हर्षोद्गम भाव संमृता रम्भेव भूमौ पतिता मरुद्धताम्। ये देखकर वहां की सखियां संकित हो गईं और तुरंत बेजन लेकर पास खड़े होकर हवा करने लगी, उनके वस्त्रों पर चंदन के फूल के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा, शंकागतास्तत्र सखी गणास्त्वरम सुवी जीयंत्यो विजनेर व्यवस्थितां श्रीखंड पुष्पन पुष्प द्रव सर्जितां सुकाम जगाद राधाम नृप गोप देवता। गोप देवी बोले, हे राधे के मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो, यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है, अगर ना आऊं तीन की सौगंध खाती हूँ, गाय की सौगंध खाती हूँ और गोरस की और अपने भाई की, तीन की सौगंध खाती हूँ। प्रभाते आगमिष्यामि मा शोकम गुरु राधिके गोष्ठ भ्रातुर गोरसस्य शपथो मे न चेदिदम्। नारद जी कहते हैं राजन यों कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर नंद गांव को चले गए। एवं उक्त्वा हरि राधाम समाश्वास्य नृपेश्वर माया युवती वेशोऽसौ यो श्री नंद गोकुलम्। नारद जी कहते हैं राजन तब रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए वृषभानु भवन में गए। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम माया यो सिंधपुर हरि राधा दुख प्रशांत्यर्थम वृषभानोर गृहम ययौ। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लेवा ले गई, आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। राधा तमागतम वीक्ष समुत्थायाति हर्षिता दत्तासना विधानेन पूजयामास मैथिलम्। श्री राधा बोली, हे सखी तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मिलता है, कुपथ्य समझते हैं गलत भोजन, रोगी को जो है गलत भोजन खाने से पहले तो बड़ा सुख मिलता है और बाद में दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार सत्संग से पहले सुख मिलता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है, संत लोग भी उसी प्रकार से दुख देने वाले होते हैं। तया विना हम ऋषि दुखितासम तया गतायाम सखिलम दे वस्तुवन पूर्वम है पत्यस्य सुखम यथाहतो तथा ततो दुखम तथा भामिनी मत प्रसंगता। नारद जी कहते हैं राजन, श्री राधा की ये बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। अब देखो कैसी परीक्षा, क्या परीक्षा ले रहे हैं भगवान। गोप देवी अनमनी हो गई, राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखिने की भांति चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार किया कि कोई अपराध हुआ है, तो विचार कर रही सखियों के साथ कि कोई अपराध हुआ है क्या, कहाँ कहाँ अपराध हो सकता है, विचार करो। तो बहुत गहराई से विचार करने लगी और स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा। इति श्रुत्वाथ तन्वाक्यम विमना गोप देवता किंचदूचे श्री राधाम दुखिते व्यवस्थिता विज्ञाय खेद संपन्नाम राधिकाम गोप देवताम सखी भी संविचार्यात है जगाद स्नेह तत्पराम। राधा बोली, हे गोप देवी तुम अनमनी क्यों हो गई, हे कल्याणी मुझे इसका कारण बताओ, माता ने कुछ कहा तो नहीं है। तुम मेरे यहाँ आई हो तो माता ने कुछ बोला हो, या पति ने कुछ बोला, या ननद ने बोला, या सास ने कुपित होकर तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है। विमनास तुम कथम भद्रे वदमाम गोप देवते मात्रा भर्त्रा ननांद्रा वा सस्वा क्रोधे न भर्सिता। हे देवी, किसी सौत के दोष से है तुम्हारा मन खिन्न तो नहीं हुआ है, सौत के कारण, या पति के वियोग से तुम खिन्न हो, अथवा अन्यत्र चित्त लग जाने से, पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में चित्त लग गया इस कारण से तुम्हारा मन खिन्न तो नहीं है। सपत्नी कृत दोषेण स्वभर्तुर विरहेण वा अन्यत्र लग्न चित्तेन विमना के मनोहरे। महाभागे, रास्ता चलने की थकावट से तुम दुखी हो, बहुत लंबा रास्ता पैदल चल करके आए हो इसलिए दुखी हो, या शरीर में कोई रोग हो गया है इसलिए तुम्हें दुख है, अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। मार्ग खेदे ने वाक्य चिन्ह कच्चिन भेवला भून रोजा अथवा शीघ्रम बद महाभागे स्वस्य दुख से कारणम। हे देवी, श्री कृष्ण भक्त किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई गलत बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी, लेकिन दो की चिकित्सा नहीं कर सकती मैं, कृष्ण भक्त या कोई ब्राह्मण, अगर वो कुछ बोला हो तो मेरा बस नहीं है, तो मेरी कोई शक्ति नहीं है, या और किसी ने कुछ बोला हो तो चिकित्सा कर दूंगी मैं, यानी दंड दूंगी मैं। कृष्ण भक्त मृत विप्रम ये न केनापि कुत्सितम कथितम तेथरम्भोरु तच्चिकित्साम करो मेहम। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी घोड़े मुझसे ग्रहण करो, हाथी लो, घोड़े लो, और नाना प्रकार के रत्न लो, वस्त्र लो, धन लो, विचित्र भवन ले लो मुझसे। गजास्वादीनि रत्नानि वस्त्राणि च धनानि च मंदिराणि विचित्राणि गृहाणि त्वं यदि इच्छसि। धन देकर शरीर की रक्षा करना चाहिए, जितना भी धन लगे शरीर की रक्षा करना चाहिए, और शरीर को भी दे करके लाज की रक्षा करना चाहिए, शरीर को भी दे करके आपने लाज की रक्षा करना चाहिए, और मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए शरीर भी और धन भी और लज्जा भी अर्पित कर देना चाहिए। तो मेरा कार्य है मित्र की कार्य की सिद्धि के लिए, तुम मेरी मित्र हो तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मैं अपना शरीर भी और धन भी और अपनी लज्जा भी ये सब मैं दे दूंगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे कार्य को सफल करने के लिए। धनम दत्वा तनुम रक्षेत तनुम दत्वा त्रपाम व्यधान धनम तनुम त्रपाम दद्यान मित्र कार्यार्थमेव ही धनम दत्वा च सतम सक्षेत प्राणान निरंतरम। जो बिना किसी कारण के मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धर्म है, वही मनुष्य परम धन्य है, बिना किसी कारण के मित्रता का निर्वाह करता है। कोई कारण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है कि भाई इनसे मेरा कुछ फायदा होगा। तो राधा रानी कहते हैं कि मेरी मित्रता तुम्हारे साथ इसी प्रकार की है, जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है उस स्वार्थी लंपट को धिक्कार है। यो मित्रताम निष्कपटम करोति निष्कारणम धन्य तमास एव विधाय मैत्रीम कपटम विधद्यान तम लंपटम हे दुपटम नटम धिक। हे राजन, उनका एक प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन राधा से हंसते हुए बोले, तस्या प्रेम वचः श्रुत्वा भगवान गोप देवताम प्रसन्ना है राजेंद्र श्री राधाम कीर्ति नंदिनी। गोप देवी ने कहा, हे राधे, बरसाना पर्वत की घाटियों में जो मनोहर सांकरी गली है उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के नवतरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनका दोस्त बता रहे हैं, राधे ब्रजन सानु गिरे सतीशु संकोच वीथीसु मनोहरासु यांतीम सतो माम दधि विक्रियार्थम रोध मार्गे नव नंद पुत्र। उनके हाथ में बंसी और बैत की छड़ी थी। उन रसिक ने लज्जा को तिलांजलि देकर तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए एकांत वन में इस प्रकार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूं, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। तो ये जो है रहस्य है तुम्हारे प्रियतम का, ये सब दोस्त तुम्हारे प्रीतम के हैं। बंसी धरो वेत्र कहा करे माम त्वरम गृहीत्वा प्रहसन विलज्जः मह्यम करा दान धनाय दानम देहि जल्पन विपने रसज्ञः तुभ्यम न दास्यामि कदापि दानम स्वयं भवे गोरस लंपटाय एवं मयोक्ते वचने ते भाण्डम नीत्वा विशीर्णी कृते भांस दधनः। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर पर्वत की ईशान कोण वाली दिशा की ओर चले गए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूं। तुम्हारे प्रीतम का ही जो है चरित्र ऐसा है जिससे मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए क्या करो, प्रेम मत करो। भांडम से भित्वा दधि किम चपीत्वा नीतो त्वरीयम मम चेदुरीयम नंदी दुरास नंदी स्वराद्रे विदिशम जगा मैं तेना हम आराध्य मनहास में जाता। एक तो जाति अच्छी नहीं है, गोप जाति के हैं वो। पहला दोस्त तो यह है गोप जाति के हैं वो, और दूसरे उनका रंग भी अच्छा नहीं है, श्याम रंग है। दूसरा दोष यह है श्याम रंग के हैं वो, और तीसरा दोष क्या है, धनी नहीं है, निर्धन है। और चौथा दोष क्या है, वीर नहीं है, वीरता नहीं है। और पांचवा दोष क्या है, शील भी नहीं है, है? और तुम सुशीला हो ना, तुम्हारा शील इतना उत्तम है, ऐसे पुरुष पर तुमने प्रेम किया ये ठीक नहीं है, है? मैं कहती हूं तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, सर्वथा त्याग कर दो कृष्ण का। जात्या सगोपा किल कृष्ण वर्णो धनी नवीरो नहि शील रूपा यस्मिन तुया प्रेम कृतम सुशीले तजासु निर्मोहनम अद्य कृष्णम। और छठवां दोष है निर्मोहन है, निर्मोही है। निर्मोही का अच्छे अर्थ में तो मतलब होता है कि मोह नहीं है, मोह से मुक्त है। निर्मोही का एक दूसरा खराब अर्थ ये भी है कि वो किसी का उपकार नहीं मानते। निर्मोही, तुम कितना भी उपकार करो वो नहीं मानेंगे, निर्मोही। तो वो ऐसे उनका ये दोष है, वो निर्मोही है, हैं? तो इस प्रकार छह प्रकार के दोष हैं ये कृष्ण में, इसलिए कृष्ण को तुम त्याग दो। इस प्रकार कठोर वचन सुनकर राधा को बड़ा विस्मय हुआ कि अरे इतना कठोर शब्द कोई बोल सकता है कृष्ण के लिए, बड़ा विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई उनसे बोली, अब मैं ऐसी कठोर बात ना बोलूं क्योंकि मेरी मित्रता है, तो सरस्वती का के चरण का स्मरण कर रहे हैं कि मैं कैसे शब्द का प्रयोग करूं कि उत्तर भी दे दूं, विरोध भी कर दूं, विरोध भी करूं और इनको बुरा भी ना लगे। तो राधा रानी सरस्वती के चरणों का स्मरण करने लगे। एकदम से वो कठोर शब्द नहीं बोलना चाहती हैं, तो कोमल शब्दों में विरोध भी करूं हैं, इसे दुख भी ना पहुंचे। तो राधा रानी सरस्वती के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी शिक्षा है ना, बहुत बड़ी शिक्षा है। इत्थं सवेरं परुषं वचस्तं श्रुत्वा च राधा वृषभानुनन्दिनी सुविस्मिता वाक्यपदे सरस्वती पदं स्मयन्ती निजगादतां प्रति। श्री राधा ने कहा, हे सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपनी योग विधि से तप करते हैं, दत्तात्रेय, सुखदेव, कपिल, आसुरी, अंगिरा आदि भी जिनके चरण कमलों के मकरंद पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हें अजन्मा परिपूर्ण देवता लीलावतार धारी सर्वजन दुख हारी भूतल भूरी भार हरणकारी सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष की, आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो, तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। यत् प्राप्तये विधिहर प्रमुखास्तपन्ति वह नौ तपा परमया निज योग रीत्यां दत्ता सुखा कपिल आसुरंग रंगिरायन पादारविंद मकरंद रजा स्पृशन्ति तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीलावतार मजमार्ति हरम जनानां भूभूरि भार हरणाय सताम शुभाय जातम विनिंदति कथम सखि दुर्विनीते। अब तुमने कहा कि गोप जाति अच्छी नहीं है, तो सुनो, गोप जाति सदा गऊओं का पालन करते हैं और गऊओं की धूल में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, गऊओं के नामों का जप करते हैं और दिन रात गऊओं के सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। मेरी समझ में गोप जाति से बढ़कर कोई जाति है नहीं। तो तुम क्या बताती हो कि गोप जाति के कृष्ण हैं तो उनका दोष है? ये तो सबसे बड़ा गुण है कि गोप जाति में है। और तुम उन्हें श्याम रंग का बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम प्रभा से विलसित दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण शंकर जी औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट हलाहल विष भस्म कपाल और सर्प धारण किए उन्हीं श्याम सुंदर के लिए पागलों की भांति दौड़ते फिरते हैं। तो तुमने कहा कि रंग खराब है, है? तो उन्हीं उसी के रंग का तो जो है स्मरण करके शंकर जी पागल हो गए, जटाजूट धारण के दौड़ते फिरे। और सिद्ध मुनि यक्ष मरुदगणों के पालक समस्त नरों किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरण कमलों में प्रणाम करके लक्ष्मी और ऐश्वर्य को पाते हैं, तुम उनको निर्धन बताती हो, जिनकी पूजा करके सबको लक्ष्मी मिलती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उनको तुम निर्धन बताती हो। और बत्तासुर, अघासुर, काली नाग, बकासुर, यमलार्जुन वृक्ष, तृणावर्त, सकटासुर, पूतना आदि का वध जिन्होंने किया, हाँ, उनको तुम निर्बल बताती हो कि वीर नहीं है, तुम उनको ऐसा बताती हो। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय नहीं। तुमने कहा शील नहीं है, उनका कितना शील है कि भक्त से बढ़कर उन्हें कोई प्रिय नहीं है। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी और बलदेव जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्यारे नहीं हैं। उनका शील देखो ऐसा है, वे भक्ति से बधे होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अथवा श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं बल्कि सुशीलों के चूड़ामणि हैं। तुमने कहा कि शील नहीं है, वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति सदा रुचि सूचित करते हैं। तुमने कहा निर्मोही, उनके भक्तों में कितनी रुचि है कि भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को मुक्ति अनायास दे देते हैं, किंतु भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। तुमने निर्मोही कैसे कहा उनको? गोप देवी बोली, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि तो बृहस्पति से बढ़ करके है। अपनी वाणी के द्वारा, प्रवचन के द्वारा वेद वाणी का अनुकरण करती हो, किंतु हे देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाएं और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बात सच्ची है। अब एक ही परीक्षा रह गई, एक ही प्रश्न का उत्तर, बाकी सब उत्तर मिल गए। राधा बोली, हे देवी, यदि श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं तो मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ, मतलब तुम्हें क्या दंड दूँ, ये नहीं बोल रही ना, बुरा लगेगा, तो तुम्हारे प्रति मैं क्या करूँ, तुम अपनी खुशी से बताओ कि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन कुछ तो दंड मिलना चाहिए ना तुमको, तो तुम्हारे प्रति मैं क्या करूं। पर अपनी ओर से इतना कह सकती हूँ, यदि मेरे स्मरण करने से उनका शुभागमन नहीं हुआ तो अपना सारा धन और ये भवन तो मैं दे दूंगी मैं। नारद जी कहते हैं, राजन तब श्री राधा उठकर श्री नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। उनके नेत्र ध्यान रथ होने के कारण निश्चल हो गए। श्री हरि ने देखा प्रीतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है, वो तो वहीं पर थे, और शरीर में पसीना हुआया है, मुख पर आंसू की धारा बह रही है, ये देखकर अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहां पर प्रकट हो गए। और प्रसन्न चित्त होकर घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे रंभोरु, हे चंद्रवदने, हे ब्रज सुंदरी शिरोमणि, हे नूतन यौवन शालिनी, हे मानशीले, हे प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। अब आँख खोलकर देखो, हे प्रीतम कृष्ण आओ, ये वाक्य यहीं से मैंने सुना था। उसी क्षण अपने गोकुल और गोपों को छोड़कर बंसीबट और यमुना के तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर आ पहुंचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारिणी देवांगना थी या मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, यहाँ से चली गई है, अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, तो श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत होकर परम आनंद में निमग्न हो गईं, उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है, अब यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, इस श्रवण का महात्म्य सुन लो, जिन्होंने सुना है वो सुन लें। क्या श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। एवं श्री कृष्ण चंद्र से चरितानि अद्भुतानि च या श्रुणोति नरो भक्त्या सा कृतार्थो भवे नरः। तो बहुत सुंदर हमने जो है कथा सुनी है, और समय भी हो गया है, तो क्या बताया गया था, 10 बजे से अभिषेक होगा, 10:30 से। ये पर्चा तो मेरे पास है, गुरुशील प्रभुपाद की श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा गौरता ईशित राम लक्ष्मण हनुमान की हरिबोल।